आज आप लोगों को ये बताते हुए हर्ष भी हो रहा है और किंचित कष्ट भी हो रहा है कि आज का पाठ जो है आपकी पुस्तक का अंतिम पाठ है। आज का पाठ ज़्यादा देर चलेगा भी नहीं और आपके ग्रंथ की समाप्ति हो जाएगी। तो प्रसन्नता की बात यह है कि निर्विघ्न जो है ये पूरा पाठ संपन्न हुआ। और कष्ट इसलिए है कि इस बहाने हम आपसे जुड़े रहते थे तो वह जो है बहाना आज ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अच्छी बात है, आप लोगों को जो है बधाई एडवांस में दे देता हूँ पाठ ख़त्म करने की। और आज का अंतिम पाठ पढ़ते हैं, यह है पराजय हेतु निग्रह स्थानम। निग्रह स्थान की बात पिछले पाठ में भी हमने की थी तो आज निग्रह स्थान के बारे में बताते हैं कि पराजय हेतु निग्रह स्थानम। निग्रह स्थान किसको कहते हैं? तो पराजय की जो स्थिति होती है माने पराजय के समय में जो चीज़ें होती हैं उसी का नाम है निग्रह स्थानम। तच्च वह निग्रह स्थान कौन कौन है? तो कहते हैं कि न्यून, अधिक, अपसिद्धांत, अर्थांतर, अप्रतिभा, मतानुज्ञा, विरोध आदि भेदात बहुविधम। इस तरह से ये बहुत प्रकार का होता है, बहुत इसके भेद हैं। लेकिन विस्तार भयात न यह कृत्स्नम उचेते, लेकिन विस्तार के भय से यहाँ पर जो है ये सारे नहीं बताए जाएंगे, निग्रह स्थान कुछ ही बताए जाएंगे। ऐसे निग्रह स्थान टोटल जो न्याय दर्शन में है वह 25 प्रकार का है। तो इसमें से जो है कुछ ही आपको यहाँ बताया जाएगा। जो यहाँ पर नाम लिया गया ना, न्यून, अधिक, अपसिद्धांत, अर्थांतर, अप्रतिभा, मतानुज्ञा, विरोध, इसको शायद सबको बताएंगे तो और वो भी बड़ा संक्षिप्त में बताएंगे। कहते हैं कि यद विवक्षित अर्थे किंचित ऊनम तन न्यूनम, कहा कि जो विवक्षित अर्थ होता है, मान लीजिए 10 अर्थ विवक्षित हैं उसमें किंचित ऊनम, अगर उसमें 8 ही बताया जाए, 7 ही बताया जाए, कुछ कम ही बताया जाए तो वहाँ पर न्यून नाम का निग्रह स्थान माना जाता है। क्योंकि पराजय की स्थिति में ही व्यक्ति जो है ना अपनी पूरी बात नहीं बता पाता है। तो यही कहा कि यद विवक्षित अर्थ है किंचित ऊनम तन न्यूनम, वह न्यून नाम का निग्रह स्थान है। फिर आगे कहते हैं विवक्षितात किंचित अधिकम अधिकम, और जो विवक्षित है जैसे कि मैंने 10 की बात की थी कि 10 अर्थ अगर विवक्षित हैं उसमें कुछ अधिक ही अगर बता दिया, 10 के बदले 11 बता दिया, 12 बता दिया, 14 बता दिया, तो वहाँ पर अधिक नाम का निग्रह स्थान माना जाएगा। ऐसा भी व्यक्ति पराजय की स्थिति में करता है। फिर कहते हैं कि सिद्धांतात अपध्वंस अपसिद्धांत, सिद्धांत से अपध्वंस होना, अपध्वंस होना माने च्युत होना, अपना जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को छोड़ करके और ही कुछ बात करना, इस तरह जो किया जाता है पराजय की स्थिति में उसको कहते हैं अपसिद्धांत शब्द से बोला जाता है। फिर जो है आगे कहते हैं प्रकृतेन अनभिसंबंध अर्थ वचनम अर्थांतरम, और अर्थांतर नाम का निग्रह स्थान क्या है कि जो प्रकृत है, प्रकृत है मतलब जो अभिष्ट बात है, उस अभिष्ट बात को छोड़ करके उससे बिना रिलेटेड गप जो है करना वो अर्थांतर की कोटि में आता है। प्रकृतेना अनभिसंबंध अर्थ वचनम अर्थांतरम, जो प्रकृत प्रसंग है, अभिष्ट प्रसंग है, उसको छोड़ करके अनभिसंबद्ध अर्थ का जो वचन है वो अर्थांतर कहलाता है। ऐसे ही अप्रतिभा का बताया, उत्तरा परिस्फूर्ति ही अप्रतिभा, ऐसा है कि परिस्फुरण परिस्फूर्ति इसको कहते हैं प्रतिभा, और परिस्फूर्ति का न होना ये है अप्रतिभा। तो कहते हैं कि उत्तर अपरिस्फूर्ति माने जवाब की अगर का परिस्फुरन अगर नहीं हुआ, जवाब अगर नहीं आया मन में, तो वह अप्रतिभा के नाम से गिना जाएगा। पर अभिमतस्य अर्थस्य स्वयमेव अभ्यनुज्ञानम स्वीकारः मतानुज्ञा, पर अभिमत जो अर्थ है माने दूसरे का जो अभिमत अर्थ है उसको स्वयं ही जो है ना समर्थन कर देना, ये मतानुज्ञा नाम का निग्रह स्थान कहलाता है। और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो पराजय की स्थिति में होती है। पराजय यहाँ युद्ध क्षेत्र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ शास्त्रार्थ की बात कर रहा हूँ। और लास्ट बताया इष्ट अर्थ भंगो विरोधा, जो आपका अभिष्ट अर्थ है और आपकी बात से उस अभिष्ट अर्थ का भंग हो रहा है, अभिष्ट अर्थ का समर्थन नहीं हो रहा है, तो उसको विरोध नाम का जो है निग्रह स्थान माना जाएगा। अब लास्ट में केशव मिश्र कहते हैं कि यह अत्यंतम उपयुक्तानाम स्वरूप भेदेन भूयः प्रतिपादनम, ताकि यहाँ इस ग्रंथ में तत्भाषा नाम के ग्रंथ में अत्यंत जो उपयुक्त बातें थीं, अत्यंत उपयुक्त बातें माने उपयोगी बातें कौन सी थी, तो न्याय शास्त्र में जो पदार्थ बताए गए हैं उन पदार्थों का जो सामान्य ज्ञान है उस सामान्य ज्ञान की सिद्धि के लिए जो उपयोगी बातें थी उसको स्वरूप भेदेना थोड़ा सा स्वरूप में चेंज करके भूयः प्रतिपादनम, यहाँ पर इस ग्रंथ में बार बार प्रतिपादन किया गया है, यत अनति प्रयोजनम, और जिन बातों का बहुत अधिक प्रयोजन नहीं है अर्थात न्याय शास्त्रोक्त पदार्थ के ज्ञान की सिद्धि सामान्य ज्ञान की सिद्धि के लिए जिसका प्रयोजन नहीं है उन बातों को हमने यहाँ पर भूयः प्रतिपादन नहीं किया है, तत् अलक्षणम उसको हमने यहाँ पर लक्षित नहीं किया, इसलिए अदोषाय, इसलिए जो बातें यहाँ रह गई हैं वह दोष के लिए नहीं है वह अदोष के लिए है, क्योंकि हमने उन्हीं बातों को यहाँ बताया जिससे कि न्याय शास्त्रोक्त पदार्थ के का सामान्य ज्ञान हो सके। और भी कहते हैं कि एतावता एव बाल व्युत्पत्ति सिद्धे है, कहा कि जितना मैंने बताया है उतनी ही बातों से बालकों की व्युत्पत्ति की सिद्धि हो जाएगी, माने बालकों को जो है ये न्याय दर्शन प्रतिपादित पदार्थों का ज्ञान जो है हो जाएगा, इसीलिए उतनी जितने से बाल व्युत्पत्ति की सिद्धि होगी उतना ही हमने बताया, उससे अधिक यहाँ पर नहीं बताया, इसलिए जो नहीं बताया उसको आप दोष न माने क्योंकि उस वह बताना हमारा प्रयोजन नहीं था। इति श्री केशव मिश्र विरचिता तर्क भाषा समाप्ता, इस तरह से केशव मिश्र जी के द्वारा जो विरचित तर्क भाषा है वह समाप्त होती है। अब यहाँ पाठ के अंत में सबसे पहले तो आप लोगों को पुनः पुनः बधाई दे दूं और फिर ये कहूं कि ये जो मैंने आपको ऑडियो के द्वारा पढ़ाया है भेजा है इस यह तो एक केवल जो है ना माध्यम है, एक सहायक सामग्री है, असली जो है आप कितना इस ग्रंथ के लक्षण को याद करते हैं, कितना उदाहरण को याद करते हैं, कितना नोट्स बनाते हैं, कितनी इसकी तैयारी करते हैं, कितना इसका मनन और चिंतन करते हैं, उस पर निर्भर करता है। गुरु जो है वह जो है बादल की तरह बरसता है, गुरु जैसे बादल जो है बरसते समय में ये नहीं सोचता कि यहाँ तालाब है तो 9 बरसूँ, यहाँ समंदर है तो 9 बरसूँ, यहाँ मरुस्थल है तो बरसूँ, इस तरह से नहीं सोचता है, वो हर जगह बरसता है। इसी तरह गुरुजी जो पढ़ाते हैं वो सबके लिए पढ़ाते हैं, एक जैसा ही पढ़ाते हैं, उसमें जैसे जिस खेत में जो है ना ज़्यादा गहराई होती है उस खेत में क्या होता है कि अधिक जल जो है बारिश का जल जमा होता है, और जिस खेत की जमीन जो है उसमें गहराई नहीं है तो उसमें पानी आता तो है बारिश का लेकिन वह बाहर बह जाता है। तो छात्र को भी जो है ना वो गहराई भूमि वाली खेत की तरह होना चाहिए कि गुरुजी ने जो पढ़ाया उसको अपने में जो है ना हम जमा करके रखें, उसको याद करें, उसको स्मरण करें, उसका अनुशीलन करें, और इस तरह से आप लोगों ने किया भी है और आप लोग करेंगे भी, इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों से जो है इस तर्क भाषा का जो ऑडियो प्रेषण वाला जो मेरा काम है या इस माध्यम से पढ़ाने का जो मेरा काम है इससे मैं आप लोगों से विदाई लेता हूं और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं। आप लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, बढ़िया से ग्रंथ की तैयारी करें, अच्छा से अच्छा नंबर लावें, ऐसा ही एक गुरु जो है अपने शिष्य से अपेक्षा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई।